કાર્તિકેયનું પરીક્ષા લેક્ચર નંબર 142 ઓ નમઃ સિદ્ધે કાર્તિકેય સ્વામી દ્વારા લિખિત જો કાર્તિકેયનું પરીક્ષા હૈ ઉસ કાર્તિકેયનું પરીક્ષા કે ગાથા નંબર 309 કો દેખતે હુએ હમ પેજ નંબર 34 પર આયે હો દેખો યહાં પર એસી બાત હૈ કે યહાં પર બાત ચલ રહી થી ઉપશમ ઓર ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ કી તો વહાં પર હમકો યે બતાયા ગયા થા જો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોતા હૈ વહ સાત કર્મો કે ક્ષય હોને સે હોતા હૈ ઓર ઉપશમ સમ્યક્ત્વ જો હોતા હૈ વહ સાત કર્મો કે ઉપશમ સે હોતા હૈ તો વહ સાત કર્મ કોન સે હૈ એસા હમકો યાદ રખના કા આવશ્યક હૈ ક્યા ક્યા હૈ બોલો સાત કર્મ હા સાત પ્રકૃતિ હા હા બહુ અચ્છા બહુ અચ્છા આપને બતાયા મિથ્યાત્વ સમ્યક મિથ્યાત્વ સમ્યક પ્રકૃતિ દર્શન મોહની કી તીન પ્રકૃતિયાં ઓર ચાર કોન ચારિત્ર મોહની કે અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોગ ઇસ તરહ ઇન સાત પ્રકૃતિઓ કે બારે મેં બાત બતાઈ થી અબ ઉસકે અગલી ગાથા મેં હમને દેખા થા ક્ષયક્ષમ સમ્યક તો કિસકો કહેના वहां कहते हैं पूर्वोक्त यानी पहले जो बताए उसमें से छह प्रकृति का उदय नहीं तो कौन से प्रकृति का उदय रहेगा सुशीला बेन क्षाप्षमिक सम्यक्त्व में कौन से प्रकृति का उदय रहेगा मालूम नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखो अभी हमने क्या देखा सात प्रकृतियों का उपशम होगा तब औपशमिक सम्यक्त्व होता है सात प्रकृतियों का क्षय होता है तो वह क्षायिक सम्यक्त्व होता है तो क्षयक्षम सम्यक्त्व में छह प्रकृति का उदय नहीं है एक प्रकृति का उदय है सम्यक प्रकृति का और कौन से छह का नहीं है बहुत अच्छा आपने बताया कि दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इनका उदय नहीं है और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ चार का उदय ऐसे छह का ये मोहिनी कर्म की छह प्रकृतियां हैं अब कहते हैं एक ही प्रकृति का उदय और वह है सम्यक प्रकृति इसलिए उस समय जो जीव के परिणाम शुद्ध रूप से चल रहे हैं उसको कहेंगे क्षयक्षम सम्यक्त्व अभी उस समय हमने यह भी देखा था जो अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि जीव होता है उसके तो मिथ्यात्व एक ही कर्म है ना दर्शन मोहिनी वाला तो उसके तीन भेद तो सम्यक्त होने के बाद होते हैं तो वो एक दर्शन मोहिनी कर्म यानी मिथ्यात्व जिसको हम कहेंगे और चार अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलो वैसे जो अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि होता है वह पांच कर्म प्रकृतियों का उपशम करता है और हमने तो हमें तो मालूम है कि जो अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि होता है उसको नियम से पहले में तो उपशम सम्यक्त्व ही होता है क्योंकि उसके सत्ता में तीन प्रकृति है नहीं ना दर्शन मुनि की, तो किसी का उपशम रखे और यानी क्षोपशम हो जाए और किसी का उदय हो जाए, ऐसी बात ही कहाँ है। इसलिए क्षोपशम सम्यक्त्व नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं पांच या सात की बात तो हमने सुन ली, लेकिन छह प्रकृतियों को भी उपशमाता है, ऐसी बात निकली थी शनिचर को। मैं इस विषय को हाथ डालने वाला नहीं था, लेकिन हमारी बहन आई ना, हाँ, तो उनके लिए दोबारा ये प्रश्न हमने उठाया, तो उसका उत्तर भी दिया था, मुझे याद है। तो कौन सी छह प्रकृतियों का उपशम करता है जीव? कोई बात नहीं, आपने सुना है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है क्या होता। हाँ बोलो बोलो। हाँ उद्वेलना कोनी करनी था, कोनी केमा था इसे। हाँ आप बताएंगे बहन। फिर ऐसा कुछ हाँ। क्यों नहीं थे कैसे? हाँ तो आपने ये ऐसा बताया कि ये क्या होता है कि जीव सम्यक प्रकृति है, वह प्रकृति उल्टी मतलब जो सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो उस समय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणत होके सम्यक प्रकृति का उदय होगा, उस समय उस जीव के शाप्शमिक सम्यक्त्व चालू रहेगा। ये बात ख्याल में आई? मैं आपको क्षोपशम सम्यक्त्व में क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा। हाँ वो मेरा बड़ा भाई था ना, वो बहुत होशियार था। अरे मैं मेरे भाई की बात बता रहा हूँ ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। वो क्या कहता था, हम छोटे छोटे थे, बोले हम जंगल में गए थे। अच्छा, अरे वहां तो शेर था, वो था, और हमने वहां एक बहुत बड़ा तोता देखा। कितना बड़ा? ए इतना। तो अरे क्या फेंकता है यार, इतना बड़ा तोता होता है क्या? अरे ठहर, मेरे को हाथ तो नीचे लाने दे। हाँ वैसे मैं पहले क्या हो रहा है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप से टर्न होके उदय में आ रही है। उस समय जिस समय सम्यक प्रकृति का ही उदय चल रहा है, उस समय क्या होगा? अब बहुत वो जीव मिथ्यात्व में गया, हा? उसके अभी सत्ता में तीनों प्रकृति है, उस समय वो क्या करने लगता है? बहुत समय तक तो उसको सम्यक तो हुआ ही नहीं, तो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है, ये सम्यक प्रकृति जो है वह सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व सॉरी मिथ्यात्व रूप से परिणत होने लगती है। उसको एक शब्द बताया था आपको मालूम है ना, अभी बताया आपने, उद्वेलना इसको बोलेंगे। तो ऐसा हो जाता है कि सम्यक प्रकृति की सत्ता नष्ट हो जाती है। अभी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ये दो और चार अनंतानुबंधी वाले तो है ही है, तो ये छह जब बाकी रहते उस समय यह जीव दोबारा उपशम सम्यक तो कर सकता है। इसलिए बताया पांच छह या सात प्रकृति का उपशम करता है। यहां तक बात हमने कल यानी सैटरडे को देखी थी। हाँ कुछ प्रश्न है? पूर्वोक्त सात प्रकृतियों माती छ प्रकृतियों नो उदय न हो पन सजातीय प्रकृति रूपे तेनो उदय होए तथा सम्यक प्रकृति नो उदय तथा क्षयक्षमिक सम्यक्त्व थाय छे। तो ये जो हमने अभी क्षयक्षम समय तो किसको कहना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की। कहते जो सात प्रकृति कही थी उसमें से छह प्रकृति का उदय नहीं रहेगा, और किसका होगा तो सम्यक प्रकृति का। उस समय इस जीव के कैसे परिणाम है, तो कहते अच्छे परिणाम है, शुद्ध परिणाम दे, उसको शाप्शमिक सम्यक तो कहेंगे। दर्शन मोह अने चारित्र मोह ते बनने सजातीय छे, तेमा अनंतानुबंधीनी प्रकृति नो उदय न होय। पण ते अप्रत्याख्यान वगैरह रूप थईने उदय मा आवे। क्या कहना चाहते हैं, अभी हम अपनी भाषा में समझेंगे। ये दर्शन मोहनी कर, अभी जो कोई जीव उपशम करने जा रहा है ना, वो उपशम करने जा रहा है, वो जीव क्या करेगा कि मिथ्यात्व कर्म का जो निषेक है, मिथ्यात्व कर्म के, उसमें बीच में गैप करेगा। लेकिन ये चारित्र मोहनी के जो अनंतानुबंधी आदि जो है, उसके अंदर गैप नहीं करता है वो। तो क्या होते हैं, तो वह जो जैसे जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय आने के पहले वह अप्रत्याख्यानादि कर्म रूप परिणत हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो वो ये बात बता रहे, दर्शन मोह ने चारित्र मोह बनने सजातीय छे, यानी एक मोहनी कर्म की दो भेद है ना, इसलिए सजातीय। तेमा अनंतानुबंधीनी प्रकृतियों नो उदय न होय, पण ते अप्रत्याख्यान वगैरह रूप थईने उदय में आवे। यानी वह जीव को मिथ्यात्व नहीं होगा, क्योंकि चारित्र मोहनी का जो अनंतानुबंधी है, वह मोह का भी, मतलब चारित्र मोहनी का भी घातक है और सम्यक्त्व भी होने नहीं देता है। फिर कहते हैं भावार्थ, मिथ्यात्व अने सम्यक मिथ्यात्वनो उदयनो अभाव होय, सम्यक प्रकृतिनो उदय होय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभना उदयनो अभाव होय, तथा विसंयोजन करी अप्रत्याख्याना वर्णादि रूपती उदयमान होय, ते वेड़ा शब्शम सम्यक्त्व उपजे छे। आ त्रणे सम्यक्त्वनी उत्पत्तिनु विशेष कथन श्री गोमटसार लब्धिसारथी जाणवू। जे अरे बाप रे, नीचे ये कहां हमने पढ़ा नहीं था क्या, ये किससे मतलब रखता है, विसंयोजन, विसंयोजन
कल बताया था ना, विसंयोजन की बात कल करेंगे करके, कल समय नहीं था।
हाँ बताओ बताओ।
हाँ देखो, जो अर्थ में जो लिखा था ये भावार्थ में के मिथ्यात्व ने सम्यक मिथ्यात्व ना उदय नो अभाव है, ये क्षोभशम सम्यक्त्व की बात चल रही है, दो का उदय का अभाव है। परंतु यहाँ उसको जो उपशम कह रहा है उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व के काल में गैप वाला उपशम किया था, पहले गैप करके फिर उपशम किया था, अब यहाँ ऐसा उपशम नहीं है। अब यहाँ ये उदय में नहीं आ रहा है, इतना ही उपशम है। सम्यक प्रकृति रूप से उदय होकर उदय में आ रहा है, यानी उसमें टर्न होकर उदय में आ रहा है। जैसे उदय रूप जो निषेक है उसमें वो सम्यक प्रकृति रूप होता है, दूसरे निषेक से उसकी सत्ता है। परंतु पहला हमने जो देखा था औपशमिक सम्यक्त्व में, उसमें पहले गैप कर किया था, वहाँ कोई उसके निषेक ही नहीं है, और जो ऊपर पड़े हैं सारे सत्ता में उनको उपशमित किया था, वो अपनी जगह छोड़कर नीचे नहीं आ रहे थे। दो अलग अलग टाइप के उपशम होते हैं। यहाँ जो क्षोभशम वाला जो है उसका उदय नहीं होना, इतना ही उसका अर्थ लेना। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो रहा, तो उदय नहीं हो रहा तो क्या होगा, अभी तो परमाणु तो छोड़कर चले जाएंगे जीव को, तो वो सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएंगे। अनंतानुबंधी का भी ऐसा ही हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सत्ता में अभी पड़े हैं सारे, उसमें तो गैप हो ही नहीं सकता, और वो भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वगैरह अन्य कषाय रूप होकर उदय में आते हैं। उदय के समय में उनका संक्रमण होता है, बाकी सत्ता में एज इट इज पड़े हैं। हाँ, उसको उदयाभाविक क्षय, ये अपने क्षोभशम की परिभाषा हुई थी पहले बहुत विस्तार से। अब यहाँ क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभना उदयनो अभाव, इतना ही अगर हम देखते हैं तो क्षोभशम घटित होता है। यहाँ तथा कहकर उन्होंने और एक बात बताई कि ये जो शौशमिक सम्यक दृष्टि है उसका ऐसा ही हो सकता है कि अनंत आनंदी सत्ता में है और उदय में अन्य प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहा है, परंतु कोई जीव उनकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है तो उसके कारण तीन करण परिणाम होते हैं। तीन करण परिणामों के नाम मालूम है? बोलो। तीन करण परिणामों के नाम मालूम है?
किसको पूछ रहे हैं?
हाँ, आप प्रभा बेन को।
प्रभा बेन, हाँ बोलो बेन।
हाँ बराबर है। अधक करण कहो या अध प्रवृत्त करण कहो, एक ही बात है, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। जैसे मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व होने के समय में तीन करण होते हैं, जब जब यहाँ जीव की विशुद्धि विशेष बढ़ती है तो यहाँ तीन करण परिणाम कहे जाते हैं, जिसको हम द्रव्यान युग में शुद्ध उपयोग कहेंगे। तो वहां पर ये ऑलरेडी क्षोभसम सम्यक दृष्टि है और उसके ऐसे विशुद्धि परिणाम बढ़ने के कारण पूरा में पूरा जितना अनंतानुबंधी सत्ता में पड़े हैं वो सारे के सारे अन्य 12 कषाय रूप हो जाते हैं। 12 और 9 भी बताए, पर हम तो अन्य 12 रूप होते ऐसा कहेंगे यहाँ पर। तो उसको कहते हैं विसंयोजना, वो भी वेदक समय दृष्टि ही है। इसलिए तथा कह के दोनों ऑप्शन बताए। क्या कहा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभना उदय नो अभाव होए, यानी अन्य रूप होकर उदय में आ रहे, या दूसरा भी ऑप्शन क्या है, तथा विसंयोजन करी अप्रत्याख्याना वर्णादि रूपति उदयमायन हो। ये उदय का अभाव होता है तो उदय तो अप्रत्याख्याना वर्णादि का ही है, क्योंकि तीन कषाय बाकी है ना, तीन कषाय चोकरी, उनका उदय रहेगा वहां पर, अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा। तो अनंतानुबंधी या तो सत्ता में है और अन्य रूप से उदय में आते हैं, या उसकी विसंयोजना हो जाती है तो अन्य कषाय है ही, उनका ही उदय होगा ही होगा, यानी वो सारे के सारे अन्य रूप से टर्न हो गए हैं उसको। हाँ हाँ, उदय में तो एक ही बात है, परंतु यहाँ सत्ता है और उदय नहीं है, और विसंयोजना में सत्ता ही नहीं है, परमाणु जो है उसका फॉर्म बदल गया। अभी पहले उन्हीं परमाणु को अनंतानुबंधी कहते थे, अब वो किस रूप हो गए? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन। हाँ, सत्ता में से पूरे टर्न हो जाते हैं, जितने हैं हाँ उसमें भी टर्न होते, पर पूरे के पूरे टर्न होते हैं, और जो ऑर्डिनरी रहते हैं वहां तो वर्तमान का एक निषेक छोड़कर ऊपर सत्ता में पड़े रहे। हाँ, अंत कोड़ा कोड़ी जितने निषेक है वहां पर सत्ता में। हाँ, खाली उदय रूप एक निषेक टर्न होके उदय में आता है।
नहीं नहीं,
विसंयोजन में सारा का सारा।
देखो अभी पहले जो बताया अभाव है।
नहीं नहीं नहीं, चौथे में ही रहता है। और ये विसंयोजना देवों के भी होती है, नारकियों के भी, तिरंचों के भी, मनुष्यों के भी, ऑर्डिनरी जो है।
सुनो। हाँ बोलो।
ऑर्डिनरी जो वेदक सम्यक दृष्टि है, तो जैसे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा है और उदय में होते हुए सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आ रहा है, वैसा ही अनंतानुबंधी सत्ता में पड़ा है और उदय वाला निषेक जो है, एक निषेक, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संवलन रूप होकर उदय में आता है।
एक एक समय का जो उदय में आने वाला निषेक है वह अप्रत्याख्यान वर्णादि रूप से टर्न होके उदय में आएगा, सत्ता में बहुत स्टॉक पड़ा है।
मिथ्या तो में जाएंगे तो आएगा। किसका? विसंयोजना वाले। हाँ, विसंयोजन वाला है तो वो विसंयोजना की है उसने, अभी परिणाम पलट गए, मिथ्यात्व का उदय आया, अनंतानुबंधी का नहीं है क्योंकि है ही नहीं सत्ता में, फिर भी मिथ्यात्व में जाता है तो मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी का नया बंध होता है और ये आवली काल में उसका फिर उदय शुरू हो जाता है। आवली तक उदय नहीं होगा, बंधने के बाद वो फिर उदय शुरू हो जाता है, एक आवली के बाद।
और विसंयोजना में पूरा का पूरा टर्न हो जाता है।
खलास पूरा होता ही नहीं
उदय में, नहीं आवे,
यानी जैसे अनंतानुबंधी
बात द्रव्यान योग करेगा, यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।
नहीं, जैसे अनंतानुबंधी में विसंयोजना होती है ऐसे अप्रत्याख्यान वगैरह उसमें नहीं होती, उसमें ऐसा ही होगा जो टर्न होते होते एक एक समय वाला वो प्रत्याख्यान रूप से हो जाएगा जो पांचवें में जाएगा, तो बाकी सत्ता में पड़े रहेंगे। कल ये विषय योजना की बात कल नहीं रही थी, हाँ क्षय होगा तो उसमें तो सत्ता में से निकल गया आपको, हाँ हाँ सत्ता में भी संयोजन, उसका नाम इसलिए है कि वो टेम्पररी है, रिवर्सिबल है वो, क्योंकि फिर मिथ्यात्व में जा पूरा टर्न हो गया। अब वही भी संयोजना जिसने की है ऐसा जो मिथ्यात्व में जा सकता है, तो वहां तो मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में गया है, परंतु नया अनंतानुबंधी बंधेगा। अब यहाँ जो नीचे लिखा है फुटनोट में जो पढ़ना रह गया था कल, जे त्रण करण वड़े, त्रण करण वड़े ने अभी जो हमने देखे थे उसके नाम अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये बढ़ती हुई विशुद्धि के नाम है। अनंतानुबंधी ना परमाणुओं ने, परमाणु तो परमाणु रहेगी अभी वो कर्म रूप है, अन्य चारित्र मोहनीय प्रकृति रूप परिणमावी तेने एटले अनंतानुबंधीनी सत्तानो नाश करवामां आवे तेनुं नाम विसंयोजन छे। अब आगे पढ़ेंगे प्रवचन, यहाँ 35 पेज पर है। यहाँ पढ़ा था ना आपने कि नहीं पढ़ा, भावार्थ में ये रिपीट किया है पर
ये हाँ, भावार्थ में था, उसके बाद में हमने पढ़ लिया अभी।
हाँ
यहाँ हो गया ना नीचे,
हाँ हो गया में। हो गया
हाँ। पेज नंबर 35 पर हम पढ़ते हैं, जुओ आत्मा मा क्षोभशम सम्यक तो परिणाम थाय त्या सामे छ कर्म प्रकृति मा तेना कारणे आवी अनुदय रूप दशा होई छे। क्या बताना चाहते हैं, यहाँ दोनों ही द्रव्यों में अपना अपना स्वतंत्र परिणमन अपने से हो रहा है, जीवों के परिणामों के होने से कर्म में कोई तब्दीली हो जाए या कर्म का उदय आवे इसलिए जीव के परिणाम पलटे, ऐसा कभी नहीं होता। ये बात जब हम ख्याल में रखते हैं तब 11वें गुणस्थान से जीव गिर जाता है, क्यों? क्योंकि वहां कर्मों का उदय आता है तो अपने को डर लगता है, अरे 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 कर्म कर्म सताते हैं। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना क्या लिखते हैं, आत्मा मा क्षोभशम सम्यक तो परिणाम थाय क्या सामे सात कर्म प्रकृति मा छ छ छ छ छ सामे छ कर्म प्रकृति मा कर्मना कारणे आवी अनुदय दशा, अनुदय रूप दशा होई छे, यानी कर्म का परिणमन कर्म में अपने स्वयं के कारण से हो रहा है और जीव के परिणाम जीव में अपने स्वयं के कारण से हो रहा है। वहां कर्मों की कुछ ढिलास हो गई इसलिए जीव अंदर में चला गया, ऐसी कोई बात है नहीं। दोनों ही बातें एक साथ होती है, एक समय में होती है, अगर एक के कारण दूसरा होता हो तो कहीं आगे पीछे हो जाए, लेकिन दोनों कार्य एक समय होता है इसलिए उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए कहेंगे कि भाई इसके कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ कह दिया अनुदय रूप दशा, और आपके भाव में नाश हो जाता है या ना, वो रहता ही नहीं है, अभाव हो जाता है, यानी एक कर द्रव्यानुयोग ऐसा कहेगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा अनुदय रूप दशा। तो अनुदय किस किस कारण से हो सकता है, सरला बिना बताएंगे, अनुदय किस किस कारण से हो सकता है, कर्मों का कोई भी, अभी हम चारित्र मोनी की बात कर रहे, तो चारित्र मोनी की कहो, दर्शन मोनी की कहो, कोई भी कहो, ये बराबर है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अनुदय रूप दशा, ऐसा जब कहा तो उसमें कितनी बातें गर्भित है। चलो और
उनको पूछना है कर्मों, नहीं नहीं कर्मों की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती,
तो वही बात हो गई ना। हाँ हाँ
बोलो,
तो आपने सब खोल दिया। हाँ हाँ और शब शब देखो देखो देखो, अनुदय दशा रूप जो है ना, तो उसमें उपशम होगा, हाँ, और क्षय होगा, दो बातें, और क्षयपशम भी होगा, तीन है ना उसमें, उदयाभावी क्षय, सदअवस्था रूप उपशम, और बाकी जो उदय है, उदय रूप भी तीन अवस्था होगी ना वहां पर।
उदय तो अन्य प्रकृति है, परंतु यहाँ अनुदय की बात पूछ रहे हैं ना, तो सदअवस्था रूप उपशम भी लेना या उदयाभावी क्षय भी उसमें लेना। उदय नहीं, हम ये क्षयोपशम की परिभाषा नहीं पूछ रहे, अनुदय का कारण पूछ रहे हैं।
ये ऐसे तीन बातों के लिए कहेंगे इसका अनुदय है, तो उसमें आपको समझना है कि कहाँ उपशम हो रहा है, कहाँ क्षय हो रहा है, ख्याल में। और एक चुकड़ी नो अभाव थी जाए, ऐसा डायरेक्ट द्रव्यानुयोग बोलेगा, लेकिन वहाँ अभाव नहीं होता है,
अभाव में उदय का अभाव समझना।
हाँ, वहाँ अन्य दो बातें भी हो सकती है, उपशम भी हो सकते हैं, सत्ता में से थोड़ी, अभाव का अर्थ क्या हो गया, वो सत्ता में से हट गए, ऐसा नहीं होता है। ये बात मुझे क्यों बार बार बतानी पड़ रही है, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, क्योंकि गुरुदेव को सुना था ना बहुत बार, एक कषाय चौकड़ी ना अभाव थी जाए, त्रण कषाय चौकड़ी ना अभाव, तो एक महाराष्ट्र की ऐसी पंडित व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं होता है, जरा धीरो था ने हांबड़, वो मराठी में बोला, तो उन्होंने बताया करणान योग ये बताएगा वो अनुदय है, उसमें तीनों ही अवस्थाएं पॉसिबल है, ख्याल में। और द्रव्यानुयोग कहेगा बस बे चौकड़ी ना अभाव थी गया, एक चौकड़ी ना अभाव थी गया, ऐसा अभाव अभाव नहीं होता है, अभाव हो जाएगा तो वो जीव दोबारा फिर मिथ्यात्व में कैसा आएगा, सासाधन में कैसा आएगा, हो सकता है ना, ये बातें भी नक्की है ना, अभी हमने देखा विसंयोजन किया हुआ जीव भी मिथ्यात्व में चला जावे, तो अभी आपने बताया अरे अभाव ही थी गया पची क्या आवे, ख्याल में है ना। तो ये मैं स्वयं गलती कर बैठता था, तो वो गलती हमारे साथियों के भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बताना, क्योंकि देखो यहाँ क्या बताते, देखो गुरुदेव ने ये बताया अनुदय रूप दशा, क्योंकि वो तो बैलेंस जानते थे ना सब, कर्णन योग एज वेल एज द्रव्यन योग, काई आत्मा तेनो करता नथी, एटले कर्मोनो करता आत्मा नथी, बन्ने नो निमित्त नैमित्तिक संबंध छे एवो छे, पण आत्माना कारणे कर्मनी दशा थई एम नथी, तेमज कर्मनो उदय अटक्यो माटे आत्मामा सम्यक तो थयुं एम पण नथी, अंतरंगमा पोतानी सामग्री परिपूर्ण थई ત્યાં સામે અનુકૂળ નિમિત્ત જ હોય, અહીં આત્માને સમ્યક દર્શન થાય ને સામે કર્મમાં અનંતાનુબંધીનો ઉદય રહ્યા કરે એમ બને નહીં, અહીં સમ્યક દર્શન થતા કર્મમાં અનંતાનુબંધીનો ઉદય પણ હોય જ નહીં એવો મેળ છે। એટલે આ સહજ થાય છે, કોઈ કરી આપે છે, કોઈ ભગવાન એમ કરતો હશે કે હું પોતે એને પુરુષાર્થ લગાડીને કર્મને ઘટાડી દઉં, ये तो कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
यानी वहाँ अनंतानुबंधी कर्मों पड़े हैं सत्ता में, फिर भी उनका वैसा उदय होगा नहीं, और यहाँ जीव के परिणामों में भी उस टाइप का राग होगा नहीं, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध ये कषाय का भी नाम है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान वगैरह ये कर्म का भी नाम है, तो वहाँ कर्म का भी उदय नहीं है और यहाँ जीव के वैसे परिणाम भी नहीं है, नहीं। उस राग की उत्पत्ति ही नहीं होती, तो समयसार में तो कहे उसको राग ही नहीं है, किस अपेक्षा अनंतानुबंधी के राग को ये राग गिना है, बाकी वो चारित्र मोनि वाला तीन कषाय वाला भी होगा तो उसका निग्लिजिबल है ऐसा कहेंगे, क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा और ये अज्ञान वाला जो राग है वैसा राग वहां नहीं है।
क्या कहा देखो, आई सम्यक दर्शन तथा कर्म में अनंतानुबंधी नो उदय पण होय ज नहीं એવો મેળ છે, પણ આત્મા કઈ કર્મ નો કરતા નથી. મેળ ભલે હોય,
એક લાઈન રહેગી
નહીં, બરાબર વહી દુબારા પડાવ મને.
અચ્છા અચ્છા,
ચોથા પાંચમા વગેરે ગુણસ્થાને
નહીં નહીં, ઉપર અંતરંગમાં પોતાની સામગ્રી રહી ગઈ.
હા, એ થઈ ગયું ને.
ચોથી લાઈન, અંતરંગમાં પોતાની સામગ્રી પરિપૂર્ણ થઈ થઈ ગઈ. તો અંતરંગમાં પોતાની ક્યાં સામગ્રી હતી બોલો? પઢાતા ને બોલો, અભી નહીં પઢા તો અભી પડે. ક્યાં લિખા હે? અંતરંગમાં પોતાની સામગ્રી પરિપૂર્ણ થઈ ત્યાં સામે અનુકૂળ નિમિત્ત જ હોય. હા, શુદ્ધ ઉપયોગ આપ કે કહેતે કુછ ભી બોલો ના, ઉસમે ક્યા હૈ? સમય દર્શન હો ગયા. દિવ્યાબેન કુછ કહેના ચાહતી દૂસરા બોલો. સમય દર્શન, જયબેન, યાની તો અરવિંદભાઈ બતાવીએ અભી. वो तो निमित्त में जो कुछ अनुकूल निमित्त हो जाए, वो अनुकूल निमित्त में भी यहाँ उसी समय वाला निमित्त लेना है ना, उसमें कर्म में ही लेना है. ये बाह्य देवगुरु शास्त्र का निमित्त तो बहुत दूर का हुआ. अरविंद भाई देखो, पांच समवाय है ना, उसमें से चार समवाय तो अंतरंग सामग्री में आ जाएंगे. क्या है? स्वभाव है, पुरुषार्थ है. पुरुषार्थ वैसे उसी जाति का है, काल लब्धि भी वैसी ही है, होनहार भी वही है. उसमें वो त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान सब कुछ ले लेना. उस समय की योग्यता है, ये सब अंतरंग में. अंतरंग मां पोतानी सामग्री परिपूर्ण थई त्या सामे अनुकूल निमित्त ज होय. और उस समय निमित्त नहीं मिलेगा तो यहां तो चार समय पूरे हो गए है, और सामे कर्म का उपशम नहीं हुआ तो क्या होगा? क्षय नहीं होगा तो क्या होगा? ये नहीं होगा, ऐसा बनेगा ही नहीं. ख्याल में है ना?
यहाँ हम ऐसा भी ले सकेंगे क्या?
होता ही है. हाँ,
हम अकेले भी ले सकेंगे.
हाँ,
अंतरंग में उपादान ने परिपूर्ण तैयारी थी गई हो तो सामे निमित्त आवे. ये हम उपादान निमित्त में
घटाते हैं. अकेला उपादान निमित्त में घटाना है तो आप उसमें घटा दो. अगर पांच समवाय में घटाना है तो चार समवाय तो अपने में होते
हैं. अपने में है,
तो सभी सामग्री आ मिलती है. जो कहा है ना, आपने सुना होगा, सभी कारण आ मिलते हैं, या सभी सामग्री, ये सामग्री में आ जाएगा. कारणों का सामग्री नहीं, सभी कारण अपने में. तो अपने में यहाँ परिपूर्ण तैयारी, उपादान की यहाँ योग्यता है. वो अकेले उपादान निमित्त में घटित करना है तो हम ऐसा कहते हैं. पांच समवाय में घटित करना है तो चार तो अपने में होते हैं, और एक निमित्त है वो परद्रव्य है. उसकी अवस्था हम तो कर नहीं सकते, परंतु वो अनुकूल ज होए. ये सहज है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है.
अभी आगे पढ़ना है आपको.
अहीं आत्मा ने समय दर्शन थाय ने सामे कर्म मां अनंतानुबंधी ने उदय रहा करे एम बने ने, यानी वो सामे अनुकूल ही निमित्त होगा, उसका अनुदय ही रहेगा, उदय नहीं रहेगा. आप पढ़ेंगे?
हाँ, अभी हम उसके आगे की लाइन तो पढ़ चुके थे दो तीन बार. अभी आगे चौथा पांचवा वगैरह गुणस्थाने समकित मोहनी नो उदय होवा छता तेनु नवु बंधन थतु नथी. क्या कहना चाहते हैं? पहले हम बेसिक समझते हैं. हाँ, कि सिर्फ मिथ्यात्व का ही यह जीव बंधन करता है. ये जो सम्यक मिथ्यात्व है और सम्यक प्रकृति है, उसका जीव उसको बांधता नहीं है. मिथ्यात्व का बंध जरूर करता है. एक बात अभी ऐसा है कि यहाँ ये दर्शन मोहनी कर्म है, कौन सा सम्यक प्रकृति है, उसका उदय चल रहा है, पर उसके निमित्त से उसको बंध नहीं होगा. कौन सा? सम्यक प्रकृति का. मिथ्यात्व भी चारित्र मोहनी, अपना दर्शन मोहनी है, लेकिन उसका उदय चल रहा है तो नया बंधन करेगा मिथ्यात्व का. लेकिन सम्यक मिथ्यात्व में है या सम्यक प्रकृति में ऐसा नहीं होता है, ये बात बता रहे. क्या कहा? देखो
देखो, मिथ्यात्व जो कषाय है ना, उसमें ऐसा नियम है कि जहाँ मिथ्यात्व का उदय है वहीं पर उसका बंद होगा, अनंतानुबंधी का उदय है वहां पर उसका बंद चल रहा है, अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय, तो जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में चार कषाय चौकड़ी का उदय है तो वहां चार और चार चार चौक 16 सभी प्रकृतियों का बंद होता है। तो जहां जिसका उदय है वहां उसका बंद होता है, ये जो सामान्य नियम है, अब वो नौ कषाय में मत लगा। तो ये जो रूल है, तो यहां जो क्षोभशम सम्यक्त्व है वहां पर सम्यक्त्व मोहिनी का उदय है, परंतु उसके उदय में उसका बंधन नहीं होता, ये बंधने योग्य प्रकृति है ही नहीं, कहीं पर भी उसका बंध नहीं होता। यहां बताने का प्रयोजन है उसके उदय होते भी उसका बंध नहीं है, इसकी बात हम दसवें गुणस्थान के लोभ के साथ कर सकते हैं। दसवें गुणस्थान में लोभ का, जैसे सूक्ष्म लोभ का उदय है, परंतु उसका उदय होने पर भी वहां नया लोभ नहीं बन रहा है, क्योंकि वो माइल्ड है। ऐसे ये दर्शन मोहिनी ऐसी माइल्ड है कि इसके उदय में उसका बंध नहीं होता है, बाकी प्रकृतियों का हो सकता है।
अब क्या कह रहे हैं, एवीज जीवना परिणाम नी योग्यता छे, जो एकेंद्रिय जीव ने एक सागर नीज उत्कृष्ट स्थिति हो छे। क्या कहना चाहते हैं, ये अभी ये जो बात चल रही ना, वो मिथ्यात्व कर्म की अपेक्षा से गिनना, जो पंचेंद्रिय जीव है, संगी पंचेंद्रिय, वह अगर दर्शन मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बंद करेगा तो कितना होगा? बेन आप जानती हैं? हाँ, ये आस्ते आस्ते बोलते हैं तो अपन 75 समझे, 70 यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष, वो सुनना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, एकेंद्रीय जीव है वो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मिथ्यात्व का बंद करेगा, कब तक? एकेंद्रीय पर्याय में होगा तो केवल एक सागर वर्ष का ही करेगा। दो इंद्रिय वाला जीव है, अभी आपको बताना पड़ेगा, आप तो रोज आते हैं तो आपको याद है क्या कुछ? दो इंद्रिय वाले जीव की मैक्सिमम ये जो बंद करता है मिथ्यात्व का, तो कितने का होगा, कितने सागर वर्षों का होगा? हाँ बोलो बोलो। 25। और तीन इंद्रिय वाला होगा तो 50, और चार इंद्रिय वाला होगा तो 100, और असंगी पंचेंद्रिय होगा तो 1000 सागर वर्ष, और संगी पंचेंद्रिय होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये भी एक कोड़ा कोड़ी सागर ऐसे ही लेते जाना, नहीं इतने वर्ष, इतने 1000 सागर ही है। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे आपसे पूछना है, एक इंद्रिय होना अच्छा क्या पंचेंद्रिय होना अच्छा? वो तो ये थोड़ी सी जनरल माहिती है ये, तो यहाँ क्या कह रहे, देखो, जो एकेंद्रीय जीव ने एक सागर नीज उत्कृष्ट स्थिति होई छे, विशेष होती नथी, पन जहाँ एकेंद्रीय माथी पंचेंद्रीय थाय त्या पेला ज समय मा अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम नी स्थिति बांधे। कभी
इतनी सूक्ष्म बात, ये जयधवला के बिना, ये उनका अभ्यास था जयधवला का, स्वामी जी का, उनकी जयधवला की पुस्तकों पर कितने मार्किंग्स किए हुए। अभी पंचेंद्रिय में पहले ही समय में, अभी ये संगी पंचेंद्रिय की बात की, असंगी की नहीं की है, संगी पंचेंद्रिय में आता है तो पहले से ऐसा नहीं लिखा कि वहां 70 कोड़ा कोड़ी का हो सकता है, पहले ही समय में अंत कोड़ा कोड़ी का आया, क्योंकि अभी मिश्र अवस्था होगी वहां पर। तो ये जो सूक्ष्म पॉइंट है, हम दो दो बार चार चार बार पहले पेजेस देख के उसको घटित करते हैं, तो कितने फ्लो में बता दिया उन्होंने। देखो, ये इतना गहरे अभ्यास के बिना ये बात कोई नहीं कह सकता था। पंचेंद्रिय में आया है, वहां भले एक सागर की स्थिति लेके आया है, अब यहाँ पंचेंद्रिय में आते ही पहले ही समय से अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है, इतनी बात ध्यान में रखो, बाकी कुछ
पहले समय में, आगे जाके सिंतर
कोड़ा फिर पर्याप्त तो होने के बाद 70 कोड़ा कोड़ी कर सकता है, बांध सकता है,
बांध सकता है,
सकने की बात है।
तो बांधेगा ही बोलेगा तो हमारा तुम्हारा रोज हर मिनट में हर समय में घबराना मत। देखो क्या कहा, फिर से दो तीन लाइन पहले से पढ़ता हूँ। जुओ एक हाँ
संगी पंचनीय वही मिनिमम अंत कोड़ा कोड़ी बांधता है, ये मिथ्यात्व की स्थिति की बात चल रही। संगी पंचेंद्रिय जीव यानी अंत कोड़ा कोड़ी, अभी कौन सा जीव करण लब्धि में अंत में अंत समय तक वो भी जीव प्रायोग लब्धि में स्थिति हो जाती है और नया बंध भी अंत कोड़ा कोड़ी होता है, परंतु अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का बंध है, उदय भी है और बंध भी है, वो भी अंत कोड़ा कोड़ी है, उससे नीचे नहीं। तो यहाँ कुछ अलग बात बताना चाहते हैं इस सिद्धांत पर से और आगे घटित करते हैं, द्रव्यान योग का सिद्धांत घटित कर रहे
हैं। बता बिल्कुल बता रहे। देखो इसलिए मैं दोबारा पीछे से पढ़ रहा हूँ। एकेंद्रीय जीव ने मिला ना जुओ, एकेंद्रीय जीव ने एक सागर नीच उत्कृष्ट स्थिति होई छे, विशेष यानी विशेष उससे अधिक नहीं होती। पर जहाँ एकेंद्रीय माथी पंचेंद्रीय थाय त्यां पेला ज समय मां, यानी अभी यहाँ से गया उधर तो पहले समय में अंतक कोड़ा कोड़ी सागरों पर अपनी स्थिति बांधे छे, तो ते क्या थी बांधी सामे निमित्त रूपे तो एक सागर थी वधु स्थिति छेज नहीं, छता अंतक कोड़ा कोड़ी सागर नु बंधन कई रीते करियो। तो कहे के केम के जीवनो स्वतंत्र पुरुषार्थ छे, सानो खोटू काम करवानो केम के वधारे बांधी तो क्या हारू काम क्यों है, એટલે ખોટા કામ કરને કે લિયે ભી સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ ઓર સચ્ચા અચ્છા કામ કરને કે લિયે ભી સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ, એક એક સમયની પર્યાય સ્વતંત્ર છે, ઉદય પ્રમાણે જ પરિણામ થાય એમ નથી। એ બિલકુલ અંડરલાઈન કર કર કે રખ દેના, નીચે કા કાગજ નહીં ફટે। ક્યાં કહેતે હૈ ये मुझे बहुत कुछ कुछ बातें ऐसी याद आती है। हम गए थे जयपुर में, वहाँ हमारे प्रदीप जी झांझरी बैठे थे प्रवचन में, तो ऐसे कोई बाहर से लोग आए होंगे, उनको बोलते कि जो उदय जैसा कर्मों का आता है वैसे डिग्री टू डिग्री इस जीव के परिणाम करने पड़ते हैं कि नहीं, तो उसका उत्तर इधर है उदय प्रमाणे ज परिणाम थाय एम नथी। केम करण लब्धि में ले चलो, वहां तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, लेकिन सामने वह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र होने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसके अनुसार थोड़ी वो परिणमित हो रहा है। और एक समय ऐसा आ गया कि वो परिणाम अपना कर्म आना रुक गया और इसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। अगर वो वैसा ही खोटा खोटा परिणाम करता तो सम्यक तो कैसा मिला था, और उन्होंने बहुत डट के उसका उत्तर दिया था, मुझे बहुत याद आती है उसकी। वड़ी बारमा गुणस्थाने भाव बंद छे पन द्रव्य बंद ततो नथी। ये किसके बारे में होगा लक्ष्मी बेन, बारमा गुणस्थाने भाव बंद छे द्रव्य बंद थतो नथी, इतले क्या कहते पूर्वे बंदेला कर्मो छे पन नवा कर्मो बंधाता नथी। देखो उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप बताएंगे कौन सा कर्म। हाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण अनंतराय, बहुत अच्छा। हाँ तो वो पहले क्यों बनते थे, कौन से गुणस्थान में, दसवें गुणस्थान में ज्ञानावरण का बंध होता है। हाँ, बस अभी बोलो मत, दसवें गुणस्थान में दर्शन का दर्शनावरण का बंध होता है।
होता है, आपने जो पहले कहा वो बराबर,
वो बराबर था, पर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो मैं आपको आगे पीछे ले गया मैं। सुनो सूक्ष्म लोभ से घबराने का नहीं, ये मेरी पद्धति ऐसी है कि मैं एकदम डट के आपको एकदम टाइट बना देता हूँ कि आप ख्याल में रखें। सुनना क्या होता है, जब ये मोहनी कर्म है ना, तो ये नवे गुण स्थान के अंत तक मोहनी कर्म का लोभ का उदय है, तब वो बांध रहा है सबको, यानी लोभ बांध रहा है। अभी क्या हो गया, ये सूक्ष्म लोभ हो गया, तो वो मोहनी कर्म नहीं बांधेगा, लेकिन दर्शनावरणीय कहो या ज्ञानावरणीय और अंतराय और बाकी वो तो बांधे ही बांधे, ख्याल में है ना। यानी दसवें गुण स्थान का जो सूक्ष्म लोभ है वो दोबारा लोभ नहीं बांधेगा, यानी मोहनी कर्म नहीं बांधेगा, अन्य तीन को बांधेगा।
बारहवें में वो नहीं बांधेगा क्योंकि हाँ। अभी वो सूक्ष्म लोभ भी नहीं है
ओ।
हाँ, तो वो नहीं बांधेगा, कषाय नहीं है, किसका, ज्ञानावरण का उदय है। हाँ, ज्ञानावरण दर्शन अंतराय सबका उदय है वहां पर, मोहनीय का ना उदय है ना बंद है, ज्ञानावरणी का भी बंद रुक गया है, अभी उदय मात्र है वो अंतर्मूर्त वाला, क्योंकि वो भी मिटने वाला है बारहवे के अंत में, उसका क्षय होने वाला है, अंतराय का भी तीनों लेना,
चार चतुष्टय एक साथ होते ना,
चार घाती में से मोहनीय पहले चला गया है दसवें में, और ये तीन है वो बारहवें के अंत में उसका क्षय हो जाएगा।
इसलिए कहते बारहवां गुण स्थान है भावबंचे, यानी वहाँ अभी अनंत ज्ञान नहीं हुए ना, अभी उसका क्षोभम ज्ञान है, तो कहते हैं पर द्रव्य बंध तत्व नहीं, क्योंकि यहाँ दसवें के अंत में वो खत्म हो गया ना, तो अभी अभी
देखो यहाँ जो साता वेदनी का उसको बंध नहीं गिनते कहीं कहीं।
हाँ
क्योंकि कषाय सहित बंधने वाला वो बंध वो यहाँ नहीं है, ये जो द्रव्य अन्य जो कर्म प्रकृतियां बनती थी उसका बंध भी रुक गया है, तो बंध नहीं है ऐसा भी कहने में आता है, क्योंकि बंध के जो कारण हमने देखे थे मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, प्रमाद उसी में ले लो, तो कषाय तक के सभी चले गए, अभी योग है केवल, और योग के कारण साता वेदनी आता है और चला जाता है, तो उसको बंध भी नहीं गिना है कहीं कहीं, तो उस अपेक्षा से ये बात ले लेना यहाँ पर।
यहाँ तो देखो क्या बता रहे हैं, बड़ी बारमा गुण स्थाने भाव बंध छे पन द्रव्य बंध थतो नथी, पूर्वे बंधायेला कर्मो छे पन नवा कर्मो बंधाता नथी, हजी बारमा गुण स्थाने भाव मोक्ष थयो नथी, ज्ञानादि गुणो हीणा रूपे परिणमे छे तेथी भाव बंध छे, पण त्या ज्ञानावरणीय आदि जड़ कर्म नो बंध थतो नथी। ये बात क्लियर हो गई। माटे जीवने कारणे उद्गल कर्म थया एम नथी, तेमज उद्गल कर्म ने कारणे जीवना परिणाम थया एम पण नथी। ये बहुत अच्छी बात बताई, जीव उद्गल बनने ना समय समय नी पर्याय स्वतंत्र छे। अभी बोले आप
आगळ औषमिक शौषमिक सम्यक्त्व अनंतानुबंधीनु विसंयोजन तथा देशव्रत ए त्रणेनु प्राप्त थऊं तथा छूटी जाऊं उत्कृष्टताती कहे छे, यानी कितनी बार उसका प्राप्त हो सकता है, तो एक बार प्राप्त होकर छूटेगा तभी तो दूसरी बार प्राप्त होगा, तो प्राप्त भी उतनी बार होगा और छूटेगा भी उतनी बार, जैसे 10 बार प्राप्त हुआ है 10 बार छूट गया है, तो अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है, किस किस की बात, औपशमिक सम्यक्त्व शायोपशमिक सम्यक्त्व अनंतानुबंधी का विसंयोजन और देशव्रत यानी पांचवा गुण स्थान कितनी बार प्राप्त हो सकता है। एक शायिक को क्यों छोड़ा एक बार प्राप्त ही होगा, वो छूटने का सवाल नहीं है। अभी हम गाथा पढ़ेंगे। गृह्णाति मुञ्चति जीवः द्वे सम्यक्त्वे असंख्यवारान् प्रथमकषाय विनाशं देशव्रतं करोति उत्कृष्टम्। देखो यहाँ विसंयोजना के लिए प्रथम कषाय विनाश कहा, प्रथम कषाय कौन सा है, अनंतानुबंधी, उसका विनाश होना है ना, उसका विसंयोजन लेना यहाँ पर, तो कितनी बार होता है कि गृह्णाति मुञ्चति जीवः, ये जो जीव है वो ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है, किसको, द्वे सम्यक पे, दोनों सम्यक को एट ए टाइम नहीं लेना है, औपशमिक सम्यक तो कितनी बार ग्रहण कर सकता है और कितनी बार छोड़ सकता है, तो कहते असंख्य बार। क्षोभशम सम्यक तो कितनी बार ग्रहण और छोड़ सकता है, असंख्य बार। और प्रथम कषाय विनाशाने विसंयोजना कितनी बार कर सकता है, वो भी असंख्यात बार। और देशव्रतम भी कितनी बार करता है, तो वो भी असंख्यात बार। देखो हम यहाँ पढ़ेंगे अर्थ में, औपशमिक करना, औपशमिक हुआ है ना, औपशमिक क्षायोपशमिक ए बनने सम्यक्त्व तथा अनंतानुबंधिनो विनाश। अर्थात जब हम विनाश अगर ये हम क्षय के अर्थ में लेते हैं, क्योंकि जब क्षय भी प्रोसेस होता है तो विसंयोजना के द्वारा ही बाद में मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, तो विसंयोजना वो फिर दोबारा नॉट रिवर्सिबल। क्षायिक सम्यक तो होता है ना, तब भी विसंयोजना होने के बाद मिथ्यात्व का क्षय, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, बाद में सम्यक्त्व का क्षय होता है। परंतु किसी किसी का विसंयोजना के बाद फिर मिथ्यात्व में जा सकता है जी, बिना क्षायिक करके। हाँ, तो इसीलिए यहाँ असंख्य बार कहा। तो अनंतानुबंधी का विनाश अर्थात विसंयोजन, एटले पहले बता चुके थे फिर भी यहाँ बता रहे, एटले तेने, तेने एटले अनंतानुबंधी ने अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमावू, ये भी बात कितने बार होते हैं, असंख्यात बार। अने देशव्रत ए चारे ने आजीव असंख्यात बार ग्रहण करे छे तथा छोड़े छे। यानी देखो छोड़ भी देता है, यानी छूटता भी देता है, का अर्थ क्या है, यानी परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि इतने सम्यक तो भी हुआ, पांचवा गुणस्थान हुआ, अनंतानुबंधी का विसंयोजना भी हुआ, तो भी वो परिणाम ऐसे बिगड़ गया कि फिर मिथ्यात्व में गया, तभी जाके फिर दोबारा उपशम सम्यक तो करेगा ना, उसका छूट गया है। और बहुत लंबा काल, देखो एक बार क्षोभशम सम्यक तो होके छूट गया तो अंतर्मूर्त में दोबारा क्षोभशम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु एक बार उपशम सम्यक तो होके छूट गया है, बाद में छूटना ही नहीं जरूरी नहीं, इमीडिएट मिथ्यात्व में आए, क्षोभशम सम्यक तो में घूम घूम कर फिर मिथ्यात्व में आ जाए, तो दोबारा उपशम सम्यक तो होने के लिए असंख्यात वर्ष बीच में गैप हो जाता है। तब तक वो वेदक तो प्राप्त कर सकता है, ये उपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। तो असंख्यात वर्षों के बाद दूसरी बार उपशम, फिर असंख्यात वर्षों के बाद तीसरी बार उपशम, और जरूरी नहीं कि दो बीच में असंख्यात ही वर्ष चले जाए, और भी ज्यादा चला जाए। क्यों? क्योंकि उद्वेलना पूरी होती है, अनादि मिथ्या दृष्टि वैसे भटकता रहता है वो, और फिर कालांतर से फिर उपशम सम्यक तो हो सक होगा, क्योंकि अभी उसको होगा तो उपशम ही होगा। बहुत काल के बाद उद्वेलना कंप्लीट हो जाती है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो उल्टी टर्न हो जाती है मिथ्यात्व में, तो अभी वो जीव उपशम सम्यक तो ही प्राप्त करना पड़ेगा उसके, उसको भी प्रथम उपशम कहेंगे। तो ऐसा प्रथम उपशम सम्यक तो कितनी बार हो सकता है और छूट सकता है, असंख्यात बार। यहाँ तो केवल असंख्यात लिखा है ना, वो तो पल्ले का असंख्यात भाग वाला
भावार्थ में लिखा है।
हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में इतनी बार होगा। देखो भावार्थ यहाँ लिखा है, देखो उसका प्रमाण, क्योंकि असंख्यात भी बहुत अलग अलग होते हैं, एक आवली जितना है उसके समय उसको भी असंख्यात कहेंगे, तो यहाँ तो पल्ले के असंख्यात वे भाग जितना असंख्यात, बहुत बड़ा प्रमाण है। भावार्थ पल्लेना असंख्यात मा भाग प्रमाण, जब भाग प्रमाण कहते तो उसमें जितने समय है उतने बार, आवली के समय देखने जाओ तो अपने यहाँ क्या होता है, आवली की बात छोड़ो, मिनिमम ने में मिनिमम असंख्यात जो है जघन्य परिता संख्यात, उसके हमने देखे थे वो पहले जो कुछ प्रमाण उसका देखा था, तो वो भी अगर उसका डिटेल में चले जाए तो नींद चली जाती है, आती है जो कुछ होना है। हाँ, चार खड्डा वाला, मैं तो नहीं नाम लेने वाली थी, आपने चार खड्डों को याद किया। तो कहते पल्ले ना असंख्य, यानी वहां समयों की संख्या लेनी उतनी बार, पल्ले ना असंख्यात मां भाग प्रमाण जे असंख्यात छे, એને પર્ટિક્યુલર અસંખ્યાત તેટલી વાર ઉત્કૃષ્ટપણે, ઉત્કૃષ્ટપણે કા અર્થ હોતા કિસી કો હો તો હો, યારે સબકો હોતા એસા નહીં, કિસી કો એક હી બાર હો જાયેગા ઓર ઉપશમ મેં સે ફિર ક્ષયોપશમ હો જાયેગા ફિર વો તો શાયક હો મોક્ષ ભી ચલા જાયેગા. તો ઉત્કૃષ્ટપણે ઉપરના ચારેને આ જીવ ગ્રહણ કરે તથા છોડે તે પછી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એક વાર હોને કે બાદ જો હમ કહેતે હૈ અર્ધપુદગલ પરાવર્તન કાલ બાકી હૈ ઉસકો મોક્ષ જાને મેં, ઉતને કાલ મેં કિસી જીવ કો અધિક સે અધિક કિતની બાર હો સકતા હૈ છૂટ સકતા હૈ, તો એ પલ્લે કે અસંખ્યાતવે ભાગ બાર.
સમજ મેં નહીં આયા. દેખો અભી આપને ક્યાં બતાયા, આપણ અભી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કી હી બાત લેંગે, તો એક દફે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ સે જીવ ગિર કર ફિર મિથ્યાત્વ મેં આવે તો દુબારા ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરને કે લીએ બહોત ટાઈમ યાને કિતના અસંખ્યાત સમય જાયેંગે, અસંખ્યાત સમય નહીં અસંખ્યાત કાલ જાયેગા, ઓર ફિર બાદ મેં દુબારા પ્રથમ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કરેગા. એસા અસંખ્યાત કાલ કે બાદ, અસંખ્યાત કાલ કે બાદ એસા કરતે જાઓ, વો અસંખ્યાત બાર વો કર સકતા હૈ. યાને જીવ ગિરે ગિરે તો કિતની બાર ગિરે, તો કહેતે ક્ષોપક્ષમ સમ્યક્ત્વ મેં ભી ઉતની બાર ગિરેગા, ઉસકો તો ગિરને કા તો ફટાફટ હોયેગા વો, સમજો. ઓર આગે તીસરી બાત ક્યા બતાઈ, વિસંયોજના કી, બોલો અભી આપ.
હા
બોલો બોલો.
યાને વિસંયોજના મેં ભી ઇતની બાર, ક્યુંકિ વિસંયોજના એક બાર કરતા હૈ તો ફિર દુબારા મિથ્યાત્વ મેં જાયેગા તો હી દુબારા અનંતાનુબંધી ઉસકી સત્તા મેં આ જાયેગા. તો સત્તા મેં આયા ફિર દુબારા ઉસને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કિયા ફિર વિસંયોજના કી ફિર ગિર ગયા, એસે અસંખ્યાત બાર હો સકતા હૈ.
અબ યે 28 સત્તા વાલા જો જીવ હૈ, 28 કર્મો કી સત્તા વાલા, 28 સમજે ના, દર્શન મુનિ કે 3 ઓર ચારિત્ર મુનિ કે 25, વો એકેન્દ્રિય મેં ચલા જાયેગા તો વો વિસંયોજના કરેગા કે નહીં કરેગા વો ભી બતાઓ.
દેખો દેખો, વિસંયોજના તો સમ્યક્ત્વ કી અવસ્થા મેં હી હોતી હૈ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો વિસંયોજના નહીં હોતી, ઉસમે ઉદ્વેલ ના હોતી. જો જીવ સમ્યક્ત્વ સે ગિર કર મિથ્યાત્વ મેં જાતા હૈ તો એક અંતર્મૂર્ત મેં ઉદ્વેલ ના બિગિન હોતી હૈ, સ્ટાર્ટ હોતી હૈ, શરૂ હોતી હૈ, ઓર જાકે અસંખ્યાત વર્ષો તક ઉસકા પ્રોસેસ ચલતા રહેતા હૈ. વો અસંખ્યાત વર્ષો કે બાદ વો ઉદ્વેલ ના પૂરી હોતી હૈ ને વો પૂરા મિથ્યાત્વ રૂપ સે ટર્ન હો જાતા હૈ.
તો ઉસકો પલ્લે કા અસંખ્યાત ભાગ જીતના ટાઈમ લગતા હૈ.
हाँ, पूरा मिथ्यात्व में आने के लिए.
तो उसके पहले पहले वो दोबारा उपशम करेगा, फिर और गिरेगा, फिर ऐसा ही जाएगा, ऐसा असंख्यात बार.
उपशम बहुत बार हो सकता है, एक एक अंतर मुहूर्त में हो सकता है. ये जो असंख्यात वर्षों का काल है ना उद्वेलना वाला, तो लास्ट वाला थोड़ा काल छोड़ दो, जो कर्मों की स्थिति एक सागर जितनी बची उतना छोड़ दो, તો વહા તક તો ઉસકો હોગા તો ઉપશમ હોગા હી નહીં, વેદક હી હોગા, શોપશમ હી સમ્યક્ત હોગા. તો એક અંતર્મૂર્ત મેં હો ગયા, ફિર અંતર્મૂર્ત કે બાદ મિથ્યાત્વ મેં આ ગયા, ફિર અંતર્મૂર્ત મેં ફિર એસે હો સકતા હૈ.
દેખો હમને કિતની બાર એસા સુના હૈ ના કે મુનિરાજ તપ કરને બેઠે હૈ, બહાર મેં સે તો એકદમ સ્થિર લગતે હૈ, લેકિન એસા હો સકતા હૈ કે સાતવે મેં સે છઠે મેં આ જાય, ઓર છઠે સે ગિર કર એકદમ ડાયરેક્ટ પહેલે મેં આ જાય, और उनको लगे अरे अरे मैंने, क्योंकि उनको पता तो लगे ना दुख का वेदन चालू होगा, जो अतीन्द्रिय आनंद था वो खत्म हो गया, तो फिर दोबारा वो एक अंतर मुहूर्त में वहां मिथ्यात्व में रहकर एक अंतर मुहूर्त में फिर दोबारा सम्यक्त्व में आएंगे सातवें में, फिर कुछ काल जाने के बाद और नीचे जा सकते हैं. हमें तो बाहर में तो बिल्कुल ऐसे स्थिर बैठे हैं, तप में हैं, ऐसा एहसास होता है. तो ये क्षोपक्षम सम्यक तो अंतर मुहूर्त के बाद भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उपशम सम्यक तो को इतना बड़ा, दो उपशम सम्यक तो का बीच का काल बहुत बड़ा है. तीन करण परिणाम करने पड़ते हैं क्या, उपशम सम्यक्त्व के लिए आपने उपशम पूछा था। अभी बाकी की इंटरेस्टिंग बातें कल। जावानी के ज्ञान तय सूझे